नमस्कार शिक्षार्थियों श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है लाइब्रेरी यूजर्स। जी हाँ, आपका ये लेसन 17 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम लाइब्रेरी यूजर्स।
डियर लर्नर्स नमस्कार, आज हम 17th लेसन पे आए हैं, वो है लाइब्रेरी यूजर्स। ये सारे ऑप्शनल मॉड्यूल के हैं। पहला जो 5A का आपका ऑप्शनल मॉड्यूल है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, ये उसी के लेसन हैं। अब हम 3rd लेसन पे आ गए हैं। तो पिछली बार जो हमने खत्म किया था लेसन लाइब्रेरी स्टाफ, उसमें हमने क्या बताया आपको, आपको जरा सा रिमाइंड कराने के लिए, याद कराने के लिए कि किस तरह से हमने बताया आपको कि कहां से शुरुआत हो जाती है। एक एडवर्टीजमेंट देने से शुरुआत हो जाती है अपने स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए, उसमें कितने सारे स्टेप्स आते हैं और कितना इंडक्शन बहुत जरूरी है नए स्टाफ के लिए जो आपके पास ज्वाइन करते हैं, या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कितनी जरूरी है स्टाफ के लिए। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप ये भी है कि आप सेल्फ असेस करते हैं, उसके बाद आपके जो सीनियर होते हैं जिसे आप रिपोर्ट करते हैं वो फिर आपको असेस करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लाइब्रेरी स्टाफ को लेने में आपको किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हर एक पद के लिए, हर एक जो पद आया है कहीं पर भी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और कईयों में एक्सपीरियंस का भी जरूरी होना जरूरी होता है, और जो वो क्वालिफिकेशंस आप पूरी कर पा रहे हैं। फिर जो दूसरे स्टेप की देखी जाती है क्वालिटीज आप में, वो देखा जाता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। आप तो जानते ही हैं, समझते हैं कि लाइब्रेरी जो एक सेक्टर है ऐसा है जो सर्विस सेक्टर है। ये हमें अब तो काफी हद तक हम इसे टैंजिबल बनाते, कई जगह हम इन्फॉर्मेशन को मतलब देकर हम पैसे भी लेते हैं, जहां पर हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से कभी कोई आर्टिकल मांगते हैं वी पे देम, तो वो उस तरह से टैंजिबल भी है। मगर कहीं हिसाब में ये देखा जाता है यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी इन्वेस्ट करती है हमारे लिए, हमारी नॉलेज के लिए, हमारे यूजर्स के लिए। जो भी कोई है, हर तरह का यूजर जो भी होगा, उनको उनकी सुविधा के लिए लाइब्रेरीज को बनाया जाता है। और उनके लिए ये डिपेंड, कोई साइज कैसा भी हो, चाहे आप एक स्कूल लाइब्रेरी की बात करें, एक छोटी सी लाइब्रेरी की बात करें, या एक बहुत बड़ी किसी लाइब्रेरी की बात करें, मगर आपका जो सर्विसेज देना है वो आपको हर लाइब्रेरी में इक्वल ही देना पड़ेगा। हाँ, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की बात करते हैं या साइंटिफिक लाइब्रेरीज की, स्पेशल लाइब्रेरीज की बात करेंगे, डेफिनेटली वहां जो सर्विसेज हैं अलग तरह की दी जाती हैं, मगर किसी भी मामले में आप ये नहीं कह सकते हैं कि स्कूल लाइब्रेरीज में आपको कम देना है। आपको उधर भी उतना ही अवेयर रहना है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास है, उन चीजों को कहां मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल रहा है, मैक्सिमम कैसे यूज कर सकते, वो कैसे आप करेंगे जब आप एकदम बोलने में बहुत अच्छे होंगे और सवाल को समझने में आसानी करेंगे। जो भी आपके पास क्लाइंट आता है, यूजर आता है, आप उसकी बात को समझते हैं और उस को ट्रांसलेट करके उसको आंसर देने की कोशिश करते हैं, चाहे आपके पास है या नहीं है, आप कहीं से भी ढूंढते हैं, कहीं से भी एसेस करके उन तक पहुंचाते हैं। तो ये सब लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स में, वैसे तो सभी जॉब्स में जरूरी है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, पर बीइंग अ सर्विस सेक्टर, लाइब्रेरी का में सर्विस ही इम्पोर्टेंट है। और लाइब्रेरी के रिसोर्सेज जब तक यूटिलाइज नहीं होंगे, हम उनको मैक्सिमम यूटिलाइज इसी तरह से कर सकते हैं कि हम खुद बहुत अच्छे से अपने यूजर्स के लिए, वी शुड ऑलवेज बी देयर 24/7 हमेशा। अगर आपके अब तो फोन्स पे या ईमेल से सब जगह से सवाल आते हैं, रेफरेंस क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, यू शुड ऑलवेज बी देयर टू एक्सेप्ट देम एंड रिप्लाई देम एंड आंसर देम। और इन सब चीजों में हमने आपको बताया था ये भी कि यूजर्स की ओपिनियन कितनी जरूरी होती है, वो आपके बारे में क्या बताते हैं कि आपकी सर्विसेज कैसी हैं, आपकी जो जो आपने रिसोर्सेज रखे हैं वो कैसे हैं, आर दे यूजफुल टू देम, उन लोगों के जरूरत के हिसाब से रखे गए हैं ना। तो ये सब चीजें हमको उनकी ओपिनियन को भी जानना जरूरी होता है। और इसमें फिर हम यूजर ओरिएंटेशन के भी बारे में हमने बात करी थी और यूजर्स को एजुकेट करने का, यूजर एजुकेशन भी बहुत छोटा छोटा हमने बताया, बहुत बड़ा नहीं गए, बट दे आर ऑल वेरी इम्पोर्टेंट, सभी बहुत जरूरी है लाइब्रेरी में रिक्रूट स्टाफ करने से पहले। ये तो स्टाफ की बात हुई थी, आज का जो हमारा लेसन है भाई ये है यूजर्स पे, जिन यूजर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो या पब्लिक लाइब्रेरी हो, सब जगह जो है हमें सर्विसेज देना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यूजर्स के बारे में बात करेंगे, कितनी तरह के यूजर्स हैं, क्या है, किस तरह से यूजर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहा जाता है कि जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि बिना कोई साइज देखे हुए या क्वालिटी देखे हुए, हमें ये देखना है कि हमारे यूजर तक हम किस तरह से पहुंच पाते हैं और हम कौन कौन से तरीके टूल्स अपनाते हैं अपने यूजर्स को आसानी करने के लिए, वो उनको आसान हो जाए लाइब्रेरी यूज करना। सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा ये रहेगा कि अगर आपका यूजर आता है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को खुद ढूंढ पाते हैं, वो सबसे बेस्ट है, उनको किसी मिडिल पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, आके पूछना नहीं पड़ता है बार बार। हमने इस तरह के तरीके अपनाए होने चाहिए लाइब्रेरीज में कि अपने आप ही चीजें बताती रहें, जैसे वो कहते हैं ना कि बोलना ना पड़े और वो बोल रही हो हमारी चीजें। इस तरह के टूल्स हमने रखे हों, कैटलॉग्स अच्छे से बने हुए हों। अगर हमारे पास अब फिजिकल कैटलॉग नहीं है तो ओपैक है तो कंप्यूटर ऑन हो, जहां पर ओपैक खुल के पता चले उन्हें, या हम यूजर ओरिएंटेशन में उन्हें ये भी बताएं कि हम उन्हें एजुकेट करें कि जो ओपैक है ये किस तरह से खुलता है, इसमें सर्चिंग कैसे होती है, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप हमारी लाइब्रेरी के कलेक्शन के बारे में जानने की तो आप एकदम से कैसे जाएंगे, कैसे देखेंगे, ये बहुत जरूरी है। चाहे जो भी रिसोर्सेज, जिस तरह से लाइब्रेरी की एक्टिविटीज हम लोग फॉलो करते हैं, वो शुरुआत कहाँ से हो जाती है, सिलेक्शन से, सिलेक्शन और फिर उन्हीं उसी मटेरियल को, उन्हीं रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, कितनी सही तरीके से हम उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, स्टोर करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं रिक्वायरमेंट्स के, यूजर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यही बेसिक एम है हमारी लाइब्रेरी का। अगर हमने एक लाइब्रेरी बनाई है और हमने उसमें काफी सारा बुक्स पे हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, हम अच्छा खासा बजट हमने रखा हुआ अपने यूजर्स के लिए, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डिपेंड करेगी, हमारे सिलेक्शन पे बहुत डिपेंड करेगी। अगर हमारी स्कूल लाइब्रेरी है तो हम कुछ ऐसी किताबें खरीदे जो बच्चों को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आनी, तो एक वेस्टेज ही है। तो इसका ऑर्गेनाइज करना, देखना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइब्रेरियंस की, कहाँ तक, जहां तक हमारी यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। देखा जाए जो हमारी यूजर सेटिस्फेक्शन है वही एक अल्टीमेट गोल होता है लाइब्रेरी के लिए। यूजर्स अगर खुश जा रहे हैं लाइब्रेरी से, दे आर हैप्पी कि उनका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहा। हमारा इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो यही कहता है कि हमें यूजर्स को जो टाइम है वो सेव करना है। टाइम हम कैसे सेव कर पाते हैं, वो हम इस तरह से सेव कर पाते हैं, हम जो लाइब्रेरी में सारे टूल्स को यूज करते हैं वो टूल्स आसान होने चाहिए, ताकि वो यूजर्स को आसानी से पता चल जाए डायरेक्शंस के बारे में। अगर हमने कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, तो हमें ये बताना है उन्हें ये कौन सी क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन में इस नंबर का क्या मतलब है, वो नंबर लिखें, साथ में हम उस नंबर की डेफिनेशन भी लिखें कि मतलब जैसे 000 है डीडीसी में जनरेलिया है। अब ये तो एक लेमैन को नहीं पता है, जहां मैं 00 लिखूंगी जनरेलिया लिख दूंगी ये भी समझ नहीं आएगा, जनरेलिया के नीचे मुझे छोटे छोटे हर जगह लिखना पड़ेगा कि जनरेलिया में लाइब्रेरी साइंस भी आ रहा है, रिसर्च भी आ रहा है, कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने सब डिवाइड किए हैं। इसी तरह की हमारी जो है यूजर एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम यूजर्स की ओपिनियन को जानने के लिए यूजर स्टडीज करते हैं. यूजर स्टडीज कैसे करते हैं, हम क्वेश्चनियर्स बनाते हैं और हम उससे ये जान जाते हैं कि हमारी जो सर्विसेज हैं क्या वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं, सही तरीके से दे पा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने यूजर्स को. उससे हमारे अंदर की जो कमियां भी हैं वो भी दूर हो जाती हैं. हम उसी तरह के सवाल फ्रेम करते हैं अपने क्वेश्चनियर में जिस तरह के सवालों का जवाब हम चाहते हैं अपनी सर्विसेज को बेटर करने के लिए. तो मेन एम हमारा यहाँ पर है लाइब्रेरी यूजर्स. तो यही हम इस लेसन में जानेंगे. इस लेसन में हम आगे जाके क्या पढ़ेंगे वो हम आपको ये बताएंगे कि कितनी तरह के यूजर्स होते हैं. हर तरह का अलग अलग यूजर होता है, उनकी नीड्स भी अलग अलग होती है. आप अगर देखेंगे घर में अगर हम चार लोग होते हैं और चार लोगों की एज अलग अलग है तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन नीड्स भी अलग अलग होती है हर किसी के. अगर आपके फादर हैं तो उनकी नीड्स अलग होंगी, मदर होगी तो उनको कुछ और चाहिए होगा. अगर कोई ओल्डर और हैं, दादाजी हैं कोई है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उन्हें ज्यादा चाहिए. तो मतलब तरह तरह के यूजर से, अलग अलग यूजर से उनकी नीड्स भी उसी हिसाब से है. ये हम आपको इसमें बताएंगे कितनी तरह के यूजर्स हैं. फिर हम आपसे ये भी बताएंगे आपको कि कौन से मेथड्स या कौन सी टेक्निक्स हम यूज करते हैं एसेस करने के लिए अपने यूजर्स के रिक्वायरमेंट्स को. कुछ मेथड्स हम रखते हैं अपने पास जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे यूजर्स की क्या क्या जरूरतें हैं. हम आपको ये बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन जो गैदर करने की हैबिट्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट. कभी कभी हर इंसान की कॉमन एक हैबिट होती है कौन सी इन्फॉर्मेशन हम फटाफट न्यूज़पेपर में पढ़ना चाहते हैं. कई लोगों को होता है कि स्टोरीज जल्दी से देख लेते हैं या स्पोर्ट्स पेज पे चले जाते हैं. इस तरह से अलग अलग हैबिट्स के हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हैबिट्स को भी एसेस करते हैं, देखते हैं. और इसमें हम आपको छोटा सा ये तरीका भी बताएंगे क्वेश्चनियर को कैसे बनाया जाता है. आप अगर आगे जाकर के और पढ़ेंगे, रिसर्च में जाएंगे, वहां पर ये आपको मदद होगी इससे कि किस तरह से हम डेवलप करते हैं रिसर्च को अपनी, किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और यूजर एजुकेशन का पर्पस क्या है और यूजर एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं किस तरह के लाइब्रेरीज आपको देती हैं. ये सारी चीजें हम आपको यूजर्स में बता देंगे. जैसे कि अब हम यूजर ग्रुप्स और इन्फॉर्मेशन नीड्स के बारे में बात करेंगे. आप सब लोगों को ये पता है कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी है वो स्टूडेंट्स, टीचर्स या किसी स्पेसिफिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब लोगों के लिए होती है. स्पेशल लाइब्रेरी जो है वो अटैच होती है R&D ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर जैसे आप कहेंगे कि अब हमारी स्पेशल लाइब्रेरी मेडिकल लाइब्रेरी है एम्स की, जो स्पेशल है यहाँ जो R&D होगी इनके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी होगी जो उनके लिए सिर्फ काम करती है. वो एक पर्सनल एंगेजमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को फॉलो अप करती है, उनकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है. और अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी को उसके मुकाबले में देखेंगे तो पब्लिक लाइब्रेरी का काम क्या है, वो लोकल रेजिडेंट्स को या उस एरिया के रीजन को हमें लोकल इन्फॉर्मेशन से फुल रखना पड़ता है. कि अगर हम दिल्ली की कोई पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें अगर हम जम्मू की लाइब्रेरी की बुक्स डाल देंगे तो इट वॉन्ट, कुछ तो कॉमन चीजें होंगी बट एक लोकल इन्फॉर्मेशन रखना भी जरूरी है. जैसे दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में बताना या कोई जानना चाहेगा दिल्ली के बारे में क्या देखने लायक चीजें हैं यहाँ पर, किस तरह से दिल्ली डेवलप हुई या कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, कितनी सारी चीजें हैं जो लोकल होंगी जो हमें पब्लिक लाइब्रेरीज में रहती, क्योंकि उनके यूजर्स जो है वो डिफरेंट है. वो वहां पर कोई भी जा सकता है और वो जानना चाहेगा दिल्ली के बारे में. इस तरह से हम अलग जगहों पे अलग इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, अलग नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम उसी तरह की जो अपनी बुक्स होती हैं या हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं. अब हम बताएंगे आपको जैसे कि यूजर ग्रुप और इन्फॉर्मेशन नीड्स का जो पर्पस क्या क्या है, मतलब छोटा सा जिसमें हमने ऑर्गेनाइज किया है, ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। उनको पढ़ना होता है स्कूल लेवल तक तो उनका अपना पढ़ाई से रिलेटेड होता है, या उन्हें प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, या एक जनरल रीडिंग होती है, नॉर्मल किसी को रीड करना है, कुछ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, नॉवल्स पढ़ना है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड हो गया। टीचर्स के लिए अगर देखा जाए, स्कूल टीचर हो या कॉलेज टीचर हो, कहीं पर भी आप देखेंगे उन्हें टीचिंग से रिलेटेड जरूर चाहिए होगा कुछ ना कुछ, कि फिजिक्स को कैसे पढ़ाया जाता है या मैथमेटिक्स को किस तरीके से इजियर वे में पढ़ाया जाएगा, जरूर वो एक टीचर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन चाहेगी। और रिसर्च में भी चाहेगी, वो जानना चाहेगी कि इस लेवल के बच्चों को किस तरह से रीडिंग हैबिट दिलवाएं हम, पढ़ाएं उनको, कितना इजी वे में जाएं हम। तो ये सब टीचर्स के लिए होगा। रिसर्चर्स को तो डेफिनेटली एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करना होता है, तो वो रिसर्चर्स करते हैं R&D करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। प्रोफेशनल्स जो हैं, प्रोफेशनल्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को परस्यू करने के लिए, प्रोफेशनल्स होंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स या लाइब्रेरियंस, मेनी मोर, देर आर लॉट मेनी प्रोफेशंस। सब प्रोफेशंस में, जैसे हम लाइब्रेरी साइंस से हैं तो हम ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि हम लाइब्रेरी साइंस के बारे में ही जाने पड़े, तो हमारे लिए ये एक प्रोफेशन है जिसको हमें परस्यू करना होता है। प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो इन्फॉर्मेशन को, पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए, उन्हें अगर आज ये डिसीजन लिया गया है तो पहले जो लिया गया था डिसीजन क्या था, उसमें क्या चीजें हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब उन्हें जानना होता है। तो जो प्लानर्स होते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं या पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, उन्हें भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहती है। इफ दे विल नॉट बी एबल टू नो कि पहले अगर ये पॉलिसी आई थी तो इस पे कितना कुछ अच्छा रहा था, इसका आउटकम क्या रहा था, तो वो भी पॉलिसीज में चेंज करना, बनाना, ये सब, इन सब चीजों के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहती है। मैनेजर्स, बिजनेस पीपल जो कोई भी इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, या मार्केट के ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन कैसी चल रही, ये सब जानने के लिए उन्हें भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ये सब हम अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन नीड्स देख रहे हैं। फिर कम्युनिकेटर्स या इंटरमीडिएटर्स होते हैं जो कि अवेयर करते हैं मासेस को। कम्युनिकेटर्स वो हो गए, जैसे मैं अगर एक हूं, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूं और मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानना होता, तभी मेरे पास जो है मैं मासेस को कॉन्टैक्ट कर पाती हूं, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हों, न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, या आप रेडियो देखेंगे, तो उनके लिए भी अलग तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें कम्युनिकेट करना होता है। वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं, बट दे आर हैव टू कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन। इंटरमीडिएटर्स भी इसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके फाइनली एक प्रोडक्ट बना के इसको बेचते भी हैं। फिर टेक्निकल्स, टेक्नीशियंस हैं, सुपरवाइजर्स हैं एंड पैरा प्रोफेशनल्स हैं, वो उन लोगों को भी अपने टेक्निकल नीड्स को, इन्फॉर्मेशन को सॉल्व, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। और जो जनरल पब्लिक है, वो देखा जाए तो उन्हें एक जनरल इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। रोज आज क्या हो रहा है, पॉलिटिकली हम किस सिचुएशन में हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज का दाम बढ़ा, या काम से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड, जिसे कहते हैं हम टेक्निकल हैंड, चाहे कोई आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कोई तरखान है, कोई शू मेकर है, कोई कुछ है, पब्लिक इंटरेस्ट, उनको उन छोटी छोटी चीजों की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इस तरह से हमारे पास यूजर ग्रुप्स जो हैं बहुत तरह के हैं। यहाँ पर हमने सारे नहीं लिए होंगे, पर इसी तरह के इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स हैं जिन लोगों के लिए हम सारे लाइब्रेरीज में काम करते हैं। इसमें से जो देखा गया है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कहा गया है, यूजर जो है, जो लाइब्रेरी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को, सर्विसेज को, वो कह रहे हैं रिसर्चर्स होते हैं। ये किस तरह से, क्योंकि उनको जो चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, उन्हें अपने आप को अपटूडेट रखना पड़ता है हर नई इन्फॉर्मेशन से, उन्हें नए एरिया, रिसर्च के लिए क्या है वो बनाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं। उन्हें जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है, डुप्लीकेट ना हो, वो देखना होता है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई हो उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत सारे सर्वेज किए गए हैं ये पता करने के लिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज्यादा यूज करने वाले लोग हैं वो रिसर्चर्स हैं, मगर उन उसी की इन्फॉर्मेशन नीड्स को, इतने सारे इन्फॉर्मेशन नीड्स जो है अलग अलग तरह के लोगों को, इसको हमने ब्रॉडली चार में डिवाइड किया, चार टाइप्स में, चार ग्रुप्स में बांटा हुआ है कहेंगे हम इसे। वो क्या थे, हमने ये देखा, इतने सारे ग्रुप्स में नहीं कहा गया, चार ग्रुप्स जो है वो क्या है, करंट इन्फॉर्मेशन नीड्स, एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड्स, एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड्स, कैचिंग अप इन्फॉर्मेशन नीड्स। ये चार जो है हमारे पास ग्रुप्स, ये वो ग्रुप्स हैं किस तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को अलग पर्सन्स के लिए, जो अलग पर्सन्स अलग अलग लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन किस तरह से जेनरेट करनी पड़ती है। सबसे पहले हम जो बोलेंगे, हम बताएंगे जो हमारे पास जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जो जानना चाहेंगे, जिन्हें इंटरेस्ट होता है और रेगुलर बेसिस में वो पूछने आते हैं, उसे कहते हैं करंट इन्फॉर्मेशन नीड। जो डेली आपके पास अगर देखेंगे, कई यूजर्स आते हैं वो जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ इस डेवलपमेंट, इस फील्ड में क्या हुआ, तो उनकी जो करंट इन्फॉर्मेशन नीड होती है, जो न्यूज़पेपर से भी फुलफिल हो जाती है, वो रूटीन की होती है। और उसके बाद जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कई लोग काम कर रहे होते हैं और एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्मेशन नीड जो है उनकी, वो एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड है, क्योंकि उन्हें उस इन्फॉर्मेशन को बारीकी से और अच्छे से समझना होता है। ये ज्यादातर जो रिक्वायरमेंट है ये रिसर्चर्स की होती है। एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड में हम किस तरह की जरूरत होती है हमें, ये वो यूजर्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड में आता है। और कैचिंग अप इन्फॉर्मेशन नीड्स कहाँ किन लोगों की होती है, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं और ओवरऑल जानना चाहते हैं अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे आज मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आया तो मैंने स्पोर्ट्स के बारे में जाना, या मुझे फिर पॉलिटिक्स क्या चल रही है आजकल, और या किसी स्टेट में क्या हो रहा है, ये कैचिंग अप होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखते हैं, पर आज की जो जरूरत है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे जरूरत है, ये कैचिंग अप ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसे। तो हमारे पास चार तरह की इन्फॉर्मेशन नीड्स होती हैं। अब हमें अगर सवाल पूछते हैं, जो पर्टिकुलरली एक सवाल यहाँ पर है, व्हाट लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द लाइब्रेरी यूजर्स। जो लाइब्रेरी यूजर्स, आपको बताया गया कितनी तरह के यूजर्स हैं, बहुत तरह के यूजर्स हैं, पर उनकी जो नीड्स हैं वो यही चार तरह की हमने जो डिसाइड की गई है, चार ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया गया है, वो है करंट इन्फॉर्मेशन नीड, एग्जॉस्टिव इन्फॉर्मेशन नीड, एवरीडे इन्फॉर्मेशन नीड, कैचिंग अप इन्फॉर्मेशन नीड। यही है चार वो चीजें जो इसका आपको रिप्लाई जवाब बना देता, और इसको आप फिर आगे जाके डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन नीड किस वजह से होती है। फिर हम बात करेंगे यूजर स्टडीज। यूजर स्टडीज क्या होती हैं? यूजर्स को अवेयर करना, उनको जानकारी देना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। जो पीरियोडिकली लाइब्रेरीज कंडक्ट करती हैं यूजर स्टडीज, किस लिए करती हैं, ये जानने के लिए कि ओपिनियन यूजर्स की, उनकी नीड्स। अब अगर कोई लोग लाइब्रेरी विजिट करते हैं और मगर हमें ये नहीं पता है कि उनकी ओपिनियन हमारे बारे में क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, तो लाइब्रेरी का उस तरह से उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। यूजर स्टडीज का मतलब यही है, हम जानना चाहते हैं, हम एसेस करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं उनकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं यूजर्स की। हम ये भी जानना चाहेंगे उनकी जो अनफुलफिल्ड है, जो ज़रूरतें हो नहीं पाई हैं, फुलफिल नहीं हो पाई हैं, जो ज़रूरतें जिनकी कमी पूरी नहीं हो पाई है वो क्या हैं, उन्हें उन चीज़ों को भी हम समझते हैं यूजर स्टडीज में। और हम ये जानते हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी रिसोर्सेज है या सर्विसेज हम जो दे रहे हैं वो वाकई यूजफुल है कि नहीं है। अगर हमने रिसोर्सेज हैं हमारे पास 100 तरह की चीजें हैं और इनका क्या यूज हो रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। फिर हम ये भी देखते हैं जो हमारे यूजर्स हैं उनकी ओपिनियन हमारी लाइब्रेरी कलेक्शन मतलब जितने रिसोर्सेज हैं हमारे उनके उसके बारे में उनकी क्या राय है और हमारे स्टाफ के बारे में उनकी क्या राय है और हमारे सर्विसेज के बारे में क्या उनकी राय है। ये बहुत जरूरी हो जाता है अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं या कहीं भी हैं अपनी गलतियों को जानना अपनी कमियों को जानना इसके लिए हम अपने आप को एसएसपी करना जरूरी होता है। इसी से हम जो अपनी चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आगे जाके उन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर हम कभी भी नहीं जानेंगे कि हम में क्या गलती है तो हम कभी भी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम ये भी असर्टेन कर लेते हैं ये भी जान जाते हैं समझ जाते हैं कि जो न्यू सर्विसेज हैं उसकी क्या जरूरत है कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें और देनी चाहिए अपने लर्नर्स को अपने यूजर्स को या कौन सी ऐसी है जो जिसका कोई खास यूज नहीं हो पा रहा है। इसलिए यूजर स्टडीज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हायर स्टडीज में। यूजर जो स्टडीज हैं वो किस तरह से हम करते हैं लाइब्रेरीज जो यूजर स्टडीज करती हैं वो दो मेथड्स हैं उसमें एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं हम लोग अपने जो यूजर्स हैं हमारे उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं जैसे कि मैंने आपसे या मेरे जितने यूजर्स हैं दिन में 100 हैं 10 हैं 50 हैं जितने यूजर्स हैं हम उनसे टच में आते हैं और उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं उनसे सवाल पूछते हैं वो हमें जवाब देते हैं उनका पूरी तरह से इन्वॉल्व लेकर के उनसे बातें करके बात करके उन्हीं चीजों को हम फिर एनालाइज करते हैं उन्हीं चीजों को देखते हैं कि हमने जो पूछा उन्होंने क्या बताया और हमें कहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो गई। ये हुआ जब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं हम किसी से कोई बात नहीं करते हम किसी यूजर के टच में नहीं आते हमारे जो अपने रिकॉर्ड्स हैं हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं जैसे कि अगर हमारे पास तो हमारी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है तो हम उसमें देखेंगे बैठ के कि स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे उनको देखेंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे जैसे कि हम सर्कुलेशन में कितना इश्यू हो रहा है जो उसके रिकॉर्ड्स में हम ये देखेंगे आज दिन में कितना इश्यू हो रहा है कौन सी किताबें जो हैं बहुत ज्यादा इश्यू हो रही हैं बार बार उनकी रिक्वेस्ट आ रही है या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसकी रिजर्वेशन पे बात होती है ये रिजर्व रखना पड़ता है रिक्वायरमेंट है लोगों की हमें इसके बदले एक के बदले चार कॉपीज रखनी चाहिए या दो कॉपीज रखनी चाहिए इस तरह से या कौन सी रेफरेंस क्वेरीज हैं ये सब चीजें जब हम देखते हैं यहां से हम काउंटिंग करते हैं उससे हमें एक इनडायरेक्ट मेथड से भी पता चल जाता है कि हमें किन चीजों में कहां हमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं अपने लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइजेशंस में इन्हें हम इनडायरेक्ट मेथड्स कहते हैं। जो ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इनडायरेक्ट मेथड से लाइब्रेरी रिकॉर्ड से जैसे कि रेफरेंस क्वेश्चंस हैं लिटरेचर सर्च किया गया है एक टाइप में और या हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज कितना है कितने क्वेश्चन है इस तरह से जो है हमें ये पता चल जाता है कि जो रीडिंग हैबिट्स है यूजर्स की वो कैसी हैं क्या पढ़ना चाहते हैं वो लोग और ज्यादातर क्या पढ़ रहे हैं और हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें हमें किस तरह की बुक्स को लाने की जरूरत है परचेज करने की जरूरत है किस तरह के ऑथर्स ज्यादा चलते हैं यहाँ पर या हमें अपने यूजर्स उसको कहीं पर अगर हमें है तो इंडक्शन देने की जरूरत है कि हमारे पास ये और इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो आप भी देख सकते हो और अगर उन्हें ठीक लगता है तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। ये सारे इनडायरेक्ट मेथड से है इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ये यूजफुल मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड का भी। पर अगर आप देखेंगे तो यूज इनडायरेक्ट मेथड इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए अच्छा है मगर जो यूजर्स के व्यूज हैं उनकी अंदर की जो बात जाननी है हमें वो हमें इन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड से नहीं मिलेगा। जब तक हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे किसी से कि हमारी सर्विसेज के बारे में या उस यूजर्स के बारे में या उनके व्यूज नहीं जानेंगे खुल के बात नहीं करेंगे तब तक हमें वो वाली इन्फॉर्मेशन कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी जो हम उनकी ओपिनियन चाहते हैं हम उनका एटीट्यूड सर्विसेज के बारे में क्या है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, बिहेवियर से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, ये सब हमें डायरेक्ट मेथड्स में मिलता है। तो ये है मेथड्स किस तरह से हम यूजर स्टडीज करते हैं। इसमें हम आपके पास क्वेश्चन है, व्हाई डू लाइब्रेरीज कंडक्ट यूजर स्टडीज, क्यों करती हैं लाइब्रेरीज यूजर स्टडीज। उससे आपको अपनी लाइब्रेरी को इम्प्रोवाइज करने में फायदा मिलता है। और कितनी तरह कैसे करते हैं हम फॉर्मल जो है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से हम करते हैं यूजर स्टडीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। इसमें हम डायरेक्ट में हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट में हम यूजर्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं, और जो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हम स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड से जो भी हमारे इश्यू रिटर्न का रिकॉर्ड है या रेफरेंस क्वेरीज हैं या उनके रीडिंग हैबिट्स जो भी हम देखते हैं रोज इश्यू हो रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं फाइनल। तो ये उनके दो क्वेश्चंस हैं। फिर हम डायरेक्ट मेथड में एक किस तरह से हम डायरेक्ट मेथड में इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम यूजर स्टडीज में इन्वॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम उसमें, हम बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं। हम सोशल सर्वेस करते हैं, हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, डायरीज रीड करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ये सारी चीजें जो है डायरेक्ट मेथड्स में आती हैं। इसमें से हम आपको क्वेश्चनेयर बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये बताएंगे क्वेश्चनेयर जब हम बनाते हैं तो किस तरह के सवाल हम उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिसर्च है चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, यहाँ पर हमारे यूजर स्टडी से रिलेटेड है, आपकी कोई भी रिसर्च हो सकती है, क्वेश्चनेयर किसी भी तरह का बन सकता है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे कि क्वेश्चनेयर किस तरह से बनता है। जो एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल माना जाता है क्वेश्चनेयर को, उसकी जो आंसर्स मिलते हैं हमें, वहां से हम अपने ओपिनियंस को देखते हैं और अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करके उसका एक आउटकम निकालते हैं कि जो हमारी स्टडी थी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए की थी हमने और इसका आउटकम ये रहा है। तो अभी हम सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे हम कि क्वेश्चंस ऑन फैक्ट्स और ओपिनियंस क्या होते हैं, जो पहला हम देखते हैं क्वेश्चनेयर में किस तरह से फैक्ट्स और ओपिनियंस में क्या क्वेश्चंस माने जाते हैं। क्वेश्चंस फैक्ट्स और ओपिनियंस में जो पूछे जाते हैं उनकी इंटेंशन ये होती है कि वो कंसर्न करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स, डिस्क्रिप्शन और बिहेवियर ऑफ द इवेंट्स। फॉर एग्जांपल दैट क्वेश्चंस अबाउट रिस्पोंडेंट्स इज एज, सेक्स, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, यूज ऑफ पर्टिकुलर सर्विस एक्सेट्रा आर द फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हम फैक्ट्स पूछते हैं, आपकी एज क्या है ये कोई बदल नहीं सकता, सेक्स क्या है ये कोई बदल नहीं सकता, क्वालिफिकेशंस क्या है ये भी आप ही बताएंगे, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ये फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चंस ऑन ओपिनियन सीक टू फाइंड आउट व्हाट अ पर्सन नोज, व्हाट ही हैज डन और व्हाट ही थिंक्स अबाउट सर्टेन सर्विसेज। ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हम ये पूछना चाहते हैं उनकी हमारी सर्विसेज, इवेंट्स या सिचुएशंस के बारे में आप बताएं। इसमें क्या एग्जांपल हमने कोट किया है, हमने ये सवाल किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइब्रेरी सर्विसेज एंड व्हाट इफ एनीथिंग डू यू वांट टू बी डन टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ये सवाल एक ओपन हो गया, ये उनसे हम पूछ रहे हैं जहां हम उन्हें इंगेज कर रहे हैं कि जो हमारी लाइब्रेरी की सर्विसेज, क्या आप इससे खुश हैं, अगर नहीं तो आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के। ये है फैक्ट्स और या ओपिनियन के बारे में जो है फैक्ट फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज क्वेश्चंस जो हैं, क्लोज क्वेश्चंस में हम क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है ताकि जो रिस्पोंडेंट है, जो कि जिसको रिस्पॉन्स करना है हमारे क्वेश्चंस को, वो ये पहले से डिटरमाइन हमने पहले से डिटरमाइन किया होता है ये येस और नो में बनना है क्वेश्चन, या वो हमने जितने जैसे भी सवाल फॉर्म किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनाया उसका, जिसमें दो पॉसिबल आंसर्स होते हैं, वो या होता है येस ये ऑप्शन में या होता है नो। मगर कई तरह के क्वेश्चंस में हम इन्हें क्या करते हैं, क्वेश्चंस में कई अल्टरनेटिव्स भी दे देते हैं जो रिस्पोंडेंट्स को अलग अलग तरह में जवाब देना है। हमने जैसे एक ग्रुप बना दिया, इसमें हमने अंडर एज बना दी 21, फिर 21 से 45, फिर 45 से 65, फिर ओवर 65, तो इसमें ये जो आंसर आएगा ये अपनी अपनी एज के हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह से मतलब सवाल हम एक ही पूछ रहे हैं मगर अपनी अपनी एज ग्रुप का जो होगा वो वहीं वहीं पर रिस्पॉन्स देगा। हाँ, तो कई जगहों पे हम जो कर रहे हैं सवाल ऐसे भी पूछते हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग रीजंस फॉर विच यू यूज द सर्विसेज। सर्विस एक ही है, जैसे कि आप लाइब्रेरी में आए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ रिसर्च से रिलेटेड, मगर मुझे ये जानना आप ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज करना चाहते हैं। आप क्या अपना टीचिंग में कहीं यूज कर रहे हैं या रिसर्च में यूज कर रहे हैं या सिर्फ अपने आप को पढ़ने के लिए अपडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं या आप कोई पेपर छाप रहे हैं या आपको वैसे ही जानना है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर यूज होनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम चार जगहों पे मांगते हैं, तो फिर आप अपनी ओपिनियन दे देंगे, हम उसमें से क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे। एक और फॉर्म है क्वेश्चन, सिंपलेस्ट जो है फॉर्म स्केल में हम पूछते हैं, कभी क्लोज क्वेश्चंस को हम पूछते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नाइदर एग्री और डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। इसमें भी आपको सवाल को समझ के ही बोलना है कि आप किस स्केल पे इस क्वेश्चन को एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आप अगर डिसएग्री कर रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपको क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं डिसएग्री कर रहे हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। ये अभी हम इसको जारी रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चनेयर पे बात होगी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अभी तक जो मैंने बताया आपको यूजर्स के बारे में, यूजर स्टडीज के बारे में, हम क्यों यूजर स्टडीज करते हैं और उसमें हम क्वेश्चनेयर कैसे डेवलप करते हैं इस पे बात कर रहे हैं। थैंक यू।